सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणं लोयालोयपयासं गोदमथेरं पुणोजिणं वीरं नमीऊणखेत्तसुत्तं जहो वये संपयासेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इस टीका की रचना की है। और यह उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। चौथी पुस्तक क्षेत्रानुगम, उसमें हम पृष्ठ संख्या 44 पर आ गए हैं। यहाँ बात अभी क्षेत्र की चल रही है ना, तो क्षेत्र में हम 10 अपेक्षाओं से क्षेत्र बताते हैं। एक तो स्वस्थान में दो भेद, स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान, समुद्घात के 7 भेद और उपपाद नाम का एक भेद, जन्म का जो उत्पन्न होने का पहला समय। इस तरह जीव की अवगाहना कितनी है और उस समय कितने जीव उस विशिष्ट गुणस्थान में या जो कुछ उनका क्राइटेरिया है उसमें, एक जीव की इतनी अवगाहना क्षेत्र तो अनेक जीवों की कितनी, इस तरह से ये सब गणित चलेगा यहाँ से भी आगे। तो यहाँ बात चल रही थी ये सासादन असंयत वगैरह, उसका कथन चल रहा था। 44 पृष्ठ पर हम आए हैं, तो यहाँ दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। एक किसकी बात चल रही है, तो सासादन और असंयत का। पहले पहले में सासादन, सम्यक मिथ्यात्व और असंयत, सम्यक दृष्टि, तीनों गुणस्थान का उन्होंने स्वस्थान बताया, विहारवत बताया, वेदना कषाय और वैक्रेक समुदय, इतने बातें बताई। मारणांतिक को नहीं लिया था उसमें और उपपाद को भी नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ सम्यक मिथ्यात्व सहित बात की थी। अब यहाँ सासादन वाले और सम्यक, सासादन वाले और असंयत वाले, सासादन वाले जो असंयत वाले हैं उनमें मारणांतिक और उपपाद की बात चल रही है, तो उसमें किसकी अधिक मुख्यता है उसकी बात यहाँ चल रही थी। कि मारणांतिक समुदाय में तो सौधर्म ईशान उनकी मुख्यता है, ऐसा भी बताया था। अब यहाँ दूसरा पैराग्राफ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर उपरिम राशि का गुणकार पूर्वोक्त ही है, क्योंकि यहाँ देव राशि की प्रधानता है, जिसमें जो संख्या जो जिसकी मेजॉरिटी होगी उसको बताएंगे, उसकी अपेक्षा से संख्या निकालेंगे। उपपाद में तो तिर्यंच राशि प्रधान है, मानना कि कौन सी गुणस्थान की बात चल रही है, चौथे वाले की। तो चौथे वाले में मारणांतिक करने वालों में देवों को मुख्य लिया और उपपाद में तिर्यंच को। मिथ्यात्व की आगे की बात, उनको प्रश्न संख्या शंकाकार ने प्रश्न पूछा था, पहले पृष्ठ पर देखना 43 पेज पर। मारणांतिक समुद्घात के काल से गुणस्थान का काल संख्यात गुणा है, काल की अपेक्षा संख्या निकालते थे पहले, इसलिए मारणांतिक जीव अपने अपने गुणस्थान के सर्व जीवों से संख्यात गुणहीन क्यों नहीं होते, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा था। उसका जवाब चल रहा है यहाँ, उसका समाधान फिर पढ़ते हैं। क्योंकि मरण करने वाले जीवों से उसी भव में मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव असंख्यात गुण है। चौथे वाले में से मरण करने वाले जीवों की अपेक्षा चौथे में से गिरकर मिथ्यात्व में जाने वाले जीव ज्यादा है, ये बात बताना चाहते हैं। अथवा उपशम सम्यक्त के काल प्रमाण आयु के अवशिष्ट रहने पर उपशम सम्यक्त गुण को प्राप्त होने वाले बहुत जीव नहीं पाए जाते, यानी आयु के अंत में प्रथम उपशम सम्यक्त प्राप्त करने वाले ज्यादा जीव नहीं है। और मानातिक समुद्घात के काल से गुणस्थान का काल संख्यात गुणा होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये उन्होंने नियम बता दिए क्यों वो ज्यादा नहीं है उसकी बात की। अब कहते हैं यहाँ पर उपरिम राशि का गुणकार पूर्वोक्त ही है, क्योंकि यहाँ देव राशि की प्रधानता है। उपपाद में तो तिर्यंच राशि प्रधान है। इतनी विशेषता है कि असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान संबंधी उपपाद में देव प्रधान है। सासाधन वालों में उन्होंने तिर्यंच को प्रधान किया, तथा असंयत गुणस्थान संबंधी मारणांतिक समुद्घात में तिर्यंच प्रधान है। उपवाद में क्योंकि उस गुणस्थान के सहित जन्मने वालों में देव प्रधान है, मेजोरिटी तो देव में जाते हैं। और कहते हैं मारणांतिक समुद्घात करने वालों असंयत वाले उसमें तिर्यंच ज्यादा है। सम्यक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद नहीं होते हैं, क्योंकि इस गुणस्थान का इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं के साथ विरोध है। ये तो हमने पहले भी देखा था। इसी प्रकार संयता संयतों का क्षेत्र जानना चाहिए। इतना विशेष है कि संयता संयतों के उपपाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? अपर्याप्त अवस्था में वो संयता संयत गुणस्थान नहीं है। चौथा तो हो सकता है, दूसरा हो सकता है, पहला हो सकता है, पांचवा नहीं होगा। तो पांचवे में मारणांतिक समुद्घात होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उपपाद तो हो सकता है, मारणांतिक नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? जो पांचवे में है वो मरण के पहले मारणांतिक समुद्घात करेगा कि नहीं करेगा? कब चौथे में जाता है? विग्रह गति के पहले समय में। ये मारणांतिक समुदाय कब करता है? कोई मनुष्य, अभी मनुष्य या तिर्यंच पांचवी गुणस्थान वर्ती है, मरने के पहले मारणांतिक समुदाय होता है। समुदाय की बात है भाई, क्या भूल हुई समझ में आया? आपकी भूल क्या हुई समझ में आया? मारणांतिक समुदाय कौन कर रहा है? मुनिराज भी कर सकते हैं ना। मुनिराज भी छठे सातवें गुणस्थान में है और उनका मारणांतिक समुद्घात हो जावे तो गुणस्थान तो वही रहेगा। मारणांतिक समुद्घात में गुणस्थान नहीं बदलेगा, मरण के अगले समय में, अनंतर समय में गुणस्थान बदलेगा। जो विग्रह गति का पहला समय होगा तभी चौथे में हो जाएगी। भले वो पांचवें में मरे या छठे सातवें मरे या उपशम श्रेणी में मरे, उनका गुणस्थान चौथा हो गया है। कब? विग्रह गति के पहले समय में। मारणांतिक तो मरण के पहले वाली अवस्था है, ख्याल आता है? तो उसमें उपपाद को नहीं लिया परंतु मारणांतिक को ले गए। इसलिए हम पढ़ने के पहले ही थोड़ा विचार करेंगे, स्वयं खाली पढ़ेंगे नहीं। देखो, क्योंकि पहले तो क्या बताया, उपपाद वाला नहीं होगा इसमें, क्योंकि अपर्याप्त काल में संयमासंयम गुणस्थान नहीं पाया जाता। अब उसकी अवगाहना और क्षेत्र निकाल रहे। संयता संयतों की अवगाहना का गुणकार घनांगुल है। मनुष्य तिर्यंच, तिर्यंच संयता संयत तो असंख्यात है, मनुष्य तो संख्यात है। तो तिर्यंचों में भी बड़े बड़े महामत्स्य है, तो वो सब उसका मेजॉरिटी उन्होंने एक घनांगुल में ले लिया उसको। मारणांतिक समुद्घात में प्रतरांगुल रूप गुणकार देना चाहिए। जो अवगाहना है, पहले क्षेत्रफल प्रतरांगुल में होता है, और जो पूरा ही घनफल निकालेंगे, तीनों डायमेंशन का गुणाकार करेंगे, तो वो घनांगुल में होगा। देखो क्या कहते हैं, अवगाहना का गुणकार घनांगुल है। अवगाहना इनटू उनके एक जीव की अवगाहना प्लस कितने क्षेत्र लंबे तक जाते हैं उसको, तीनों यानी उच्छेद हाइट विषकंभ यानी परिधि निकाल के, परिधि निकालेंगे पहले विषकंभ के द्वारा परिधि निकालेंगे, परिधि मल्टीप्लाइड बाय उच्छेद और मल्टीप्लाइड बाय मानांतिक समुदाय कितने लंबे तक किया है उसको भी लेना है, तो तीनों मिलकर घनांगुल में उत्तर होगा। और अकेला क्षेत्र अगर हम लेते हैं, मानांतिक समुदाय पूरा ही लंबा नहीं लेंगे तो अकेला क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो अवगाहना में तो क्षेत्रफल होगा, जैसे हाइट इंटू विड्थ हम क्षेत्रफल निकालते हैं, और यहाँ घनांगुल निकालना है, घनफल निकालना है। देखो वैक्रियक पद से आवली के असंख्यात भाग रूप प्रतिभाग के द्वारा अपनी राशि का असंख्यात भाग लेना चाहिए। संयता संयतों में वैक्रियक समुदात की बात की नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो आप शंकाकार ने भी यही प्रश्न पूछा है, संयता संयतों के वैक्रियक समुदात कैसे संभव है, बराबर? उसका उत्तर नहीं, क्योंकि विष्णु कुमार आदि में आपने नाम सुना है विष्णु कुमार मुनि का, रक्षाबंधन की जो कथा आती है, हाँ कौन से मुनि पर उपसर्ग हुआ था? 700, मगर वो कौन से अकलंग नहीं अकंपनाचार्य, और वो मुनिराज कौन थे जिन्होंने विवाद विवाद किया था, वो श्रुत सागर। हाँ रिद्धि होती है, वही तो बता रहे। देखो सुनो, विष्णु कुमार आदि में विक्रियात्मक औदारिक शरीर देखा जाता है, विक्रियात्मक औदारिक शरीर। मनुष्यों में तिर्यंचों में इतनी बात क्या, हमने वायुकायिकों में भी देखा था, पहले पढ़ा था गुमड़सार में, उनके भी ये विक्रिया होती है, विक्रिया होती है औदारिक शरीर की, विक्रिया होना ये उनको भी हो सकती है। संयता संयतों में भी मानांतिक समुदात को प्राप्त जीव राशि ओघ संयता संयत राशि के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है। जितने पांचवें गुणस्थान वाले जीवों की संख्या है उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव मानांतिक समुदात करेंगे। इसके कारण का प्ररूपण पहले कर आए हैं। प्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक जीवों की जघन्य अवगाहना 3.5 रत्नी प्रमाण है, यानी हाथ प्रमाण मिनिमम जो मनुष्य जो है, मनुष्यों की जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ हमने जानी है पहले भी, और उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष है। कौन से गुणस्थान से लिया है? छठे से, तो इसमें कौन आएगा? मात्र मनुष्य ही हो गए, तो विदेह क्षेत्र में तो 525 मैक्सिमम जो हाइट है, तो 525 है, और मिनिमम जो हम कभी देखते हैं तो 3.5 हाथ है। ये दोनों ही अवगाहनाएं भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होती है, विदेह में नहीं। दोनों भी कहा 525 वाली भी यहाँ पर जब शुरुआत होती है चौथे काल की, 525 धनुष और मिनिमम 3.5 तो यहीं पर की है वो, क्योंकि विदेह में 500 धनुष के उच्छेद का नियम है। विदेह में तो मैक्सिमम जो 500 धनुष है, और 525 धनुष या भरत या ऐरावत में हो सकती है। विदेह में हमेशा 500 धनुष के ही हो, ये उनका, हाँ वहाँ तो चौथा ही काल रहता है हमेशा विदेह में। देखो ये चौदहवें गुणस्थान तक की बात है ना, ये दोनों ही अवगाहना भरत और अविष्ट। हाँ अतः 525 धनुष से कुछ कम उच्छेद वाली विदेह क्षेत्रस्थ संयत राशि चूंकि सबसे अधिक होती है। देखो मेजॉरिटी कहाँ होगी, मनुष्य ज्यादा कहाँ पर होगे? विदेह में होगे, क्योंकि एक तो भरत से वो एक एक विधेय 32-32 गुना है और ऐसे 160 विधेय हैं, तो वहां संयता संयत ज्यादा होगी बराबर। तो कहते हैं संयता संयत की बात नहीं, यहां संयत की बात चल रही, संयत की बात है, संयत वहां पर ज्यादा होगी बराबर है, संयत राशि की बात चल रही है। संयता संयत का प्रकरण अभी अपना हो चुका है, अभी हम संयतों को देख रहे हैं। देखो विदेहस्थ यानी विदेह क्षेत्रस्थ संयत राशि चूंकि सबसे अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर वह राशि प्रधान है, तो उनकी मेजॉरिटी है, तो उनकी जितनी अवगाहना है उसकी अपेक्षा से यहाँ प्रमाण निकालेंगे, क्योंकि विदेहस्थ संयत राशि का 500 धनुष की ऊंचाई के साथ अविनाभाव संबंध पाया जाता है। यहाँ पर अंगुलों में किए गए मनुष्यों के उच्छेद का 9वां भाग विष्कंभ होता है। पहले हमने देवों में कौन सा रूल देखा था? हाँ, देवों में उच्छेद से विष्कंभ, विष्कंभ यानी डायमीटर, परिधि निकालते ना, शरीर संबंधी अवगाहना निकालनी है तो हाइट बता दी, तो देवों में जो विष्कंभ है तो हाइट के यानी उच्छेद के 10वां भाग है। हमने 168 को 10 से भाग दिया था कल, याद होगा। तो मनुष्यों में जितनी हाइट है विष्कंभ उसका 9वां भाग करेंगे तो विष्कंभ मिलेगा, डिवाइडेड बाय 9, ये रूल है, कल हमने देखा था उसको रूल। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, ये तो 500 तो धनुष है तो उसको अंगुलों में करेंगे तो की बात चल रही है, यहाँ पर अंगुलों में किए गए मनुष्यों के उच्छेद का 9वां भाग विष्कंभ होता है। पहले हम 500 धनुष को अंगुल करेंगे और फिर उसके विष्कंभ करें, ये विष्कंभ निकालेंगे 9 से भाग देकर, ऐसा समझकर विष्कंभ की परिधि को आधा करके और विष्कंभ के आधे से गुणित करके उच्छेद से गुणित करने पर संख्यात घनांगुल हो जाते हैं। पहले गोलाकार जो विष्कंभ निकाला उसके द्वारा हमने परिधि निकाली, तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला मल्टीप्लाइड बाय उच्छेद हाइट जो है, तो पूरा ही घनफल निकलेगा। तो हमें उच्छेद मालूम है 500 धनुष, उसका 9वां भाग हम अंगुलों में पहले करेंगे, फिर 9वां भाग वो विष्कंभ हुआ, विष्कंभ के द्वारा उसकी परिधि निकालेंगे बराबर, फिर परिधि को आधा करना और विष्कंभ के आधे से उसको गुणा करना, तो ये गोलाकार क्षेत्रफल आया, और उसको उच्छेद से गुणा करेंगे तो घनफल होगा, तो घनांगुल में हमें उत्तर मिलेगा। क्या लाता है, क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका है। इमेजिन करेंगे ना, हमने विष्कंभ मालूम है देवों की, अभी मनुष्यों की हाइट मालूम है, अभी यहाँ मनुष्यों का प्रकरण चल रहा है, 500 धनुष उसकी हाइट है, 500 धनुष का 9वां भाग उसका विष्कंभ है, विष्कंभ मालूम है तो हम इसे परिधि निकालेंगे उसकी। विष्कंभ को तो हमने देखा ना, वो 16 गुणा करो, 16 मल्टीप्लाई करो, उसमें ऐड करो, 113 से डिवाइड करो, प्लस विष्कंभ का तिगुणा उसमें मिला दो, ये जो हमने 42 पेज पर देखा था फॉर्मूला। तो परिधि निकाली, तो परिधि का आधा मल्टीप्लाइड बाय विष्कंभ का आधा, तो हमको ये गोलाकार क्षेत्र इसका क्षेत्रफल मिला। क्षेत्रफल को हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही हमको घनफल मिलेगा, घनांगुल में मिलेगा उसका उत्तर, यही बात यहाँ बताना चाहते हैं। तो ये कितने हो गए गुणित करने पर, तो संख्यात घनांगुल हो गए, भले वो करोड़ों में होंगे कि लाखों में कि हजारों में, उसकी बात नहीं, संख्यात घनांगुल उत्तर आता है। इन संख्यात घनांगुलों से अपनी अपनी राशि को गुणित करने पर इच्छित गुणस्थान संबंधी क्षेत्र होता है। ये जो एक जीव का इतना घनफल आया घनांगुल, तो प्रमत्त गुणस्थान में कितने उस राशि से गुणा करो तो प्रमत्त का क्षेत्र, अप्रमत्त के राशि से गुणा करे तो उनका क्षेत्र, आठवें गुणस्थान वाले नौवें गुणस्थान, अपने अपने क्षेत्र का, उसमें अपने अपने जीवों का, अपने अपने गुणस्थान वालों का क्षेत्र आएगा। यहाँ क्षेत्र निकालना है। तीसरी पुस्तक में हम संख्या निकालते थे, अब हमको संख्या मालूम हो गई। हमेशा एक ही ऐसा त्रयराशि करेंगे, एक जीव की इतनी अवगाहना, इतने घनांगुल, संख्यात घनांगुल, तो प्रमत्त संयत इतनी राशि है, उसका कितना घनांगुल होगा उत्तर, उसको उसका क्षेत्र कहेंगे। नहीं नहीं, प्रमत्त वो तो करोड़ों में है ना, 299 तो उपशम श्रेणी वाला आठवां गुणस्थान का, इतनी विशेषता है कि आहारक शरीर का उच्छेद एक रत्नी प्रमाण है। जब आहारक समुदात करते हैं तो उसकी हाइट कितनी है, एक हाथ प्रमाण, हमने पहले याद किया था ना, आहारक शरीर एक हाथ प्रमाण, स्वच्छ सफेद, हाँ एक हाथ प्रमाण, सप्त धातु रहित ऐसा पुतला निकलता है। ये रत्नी ने हाथ, एक रत्नी ने एक हाथ, तथा अभी जो आहारक शरीर है एक हाथ हाइट वाला, एक हाथ में अंगुल कितने देखे थे हम कल, 24, तो उच्छेद के दसवें भाग प्रमाण उसका विष्कंभ है। मनुष्यों में हमने नौवां भाग विष्कंभ देखा था, उच्छेद का नौवां भाग विष्कंभ मनुष्यों में होता है, आहारक शरीर में दसवां भाग, जैसे देवों में दसवां भाग था, वही रूल आहारक शरीर के संबंध में होगा। जो दसवां भाग उच्छेद का दसवां भाग विष्कंभ कहा था, आहारक शरीर में भी वही फॉर्मूला, क्योंकि यह शरीर दिव्य स्वरूप है, उसका कारण भी बता दिया, दिव्य देह ऐसा ना, जैसे देवों में भी दिव्य देह कहते हैं वैसे, इसका विहार में संख्यात घनांगुल क्षेत्र होता है। विहार में जब जाएगा वो आहारक शरीर के साथ जीव के प्रदेश जाएंगे तो संख्यात घनांगुल उसका क्षेत्र हो जाता है। उस समय इस शरीर का मुख अर्थात विष्कंभ और उच्छेद स्वस्थान स्वस्थान के समान अवगाहना प्रमाण है, क्योंकि मूल और आहारक शरीर के अंतराल में पद्मनाल के अच्छिन्न सूत्र संतान के समान जीव प्रदेशों का अवस्थान पाया जाता है। ये मूल शरीर जो यहाँ मुनिराज बैठे हैं या जो कुछ है, और ये आहारक शरीर यहाँ तक चला गया, तो इन दोनों के बीच में तंतु के समान आत्म प्रदेश अखंड रूप से फैले हुए हैं। यहाँ कभी बीच में ब्रेक नहीं होता, ये कुछ प्रदेश निकल कर चले गए और एक दूसरे से कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि आत्मा एक अखंड है, कोई भी समुदात हो तो बीच में उसकी कंटिन्यूटी ऐसी है। वो कितनी है, क्या लिखा है, पद्मनाल के अच्छिन्न सूत्र संतान, कमल के जो नीचे की नाल होती है, नाल यानी उसकी वो दांडी, अभी क्या कहेंगे हिंदी में, हाँ स्टेम, स्टेम को, चलो अच्छा है, अंग्रेजी लोग है ना, मदद को दौड़ते हैं जल्दी, अंग्रेजी भाषा मदद के लिए आती है जल्दी। अच्छिन्न यानी नहीं टूटा हुआ, सूत्र संतान यानी वो उसका जो धागा, यानी वो क्या कहेंगे हम, फाइबर लाइक होता है ना, उसका एक फाइबर निकालो तो पूरा ही वो पूरा अखंड है, वैसा अपनी भाषा में हम कहें कोई जे, अभी आजकल में वो लेसर बीम कैसे पूरा एक ही किरण जैसे हो लंबे तक फैलता है, वैसे दो शरीरों के बीच में एक सूत्र के समान ये अखंड उसकी आत्म प्रदेशों की धारा है, ये लाइन है, तो उसको कहते हैं कि जीव प्रदेशों का अवस्थान पाया जाता है, यानी उसमें भी जीव प्रदेश है, दोनों शरीरों के बीच में उनको जोड़ने वाली लाइन है। तो शरीर से निकले हुए जीव प्रदेशों का फिर से शरीर में प्रवेश नहीं होता, सो भी बात नहीं है, आहार संबंधी बात चल रही है। बाहर निकले हुए प्रदेश फिर आत्मा फिर उसी में उस मूल शरीर में आ जाते हैं। आहार समुदाय तो हमने देखा अंतर्मूर्त के लिए होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर समुद्घातगत केवली के जीव प्रदेशों के साथ व्यभिचार आ जाता है। यानी ये तो जनरल बात की थी कि समुद्घात करने पर बाद में वो मूल शरीर में भी प्रवेश करते हैं। यदि ऐसा नहीं मानेंगे कि प्रवेश करते ही नहीं, ऐसा रूल करेंगे, तो केवली समुदाय तो पूरे लोक में फैले हुए हैं। ये सब क्षेत्र सामान्य आदि चार लोकों के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अब जब जब किसी भी अभी प्रमत्त की राशि का हमने क्षेत्र निकाला, यहाँ संयतों की बात चल रही, तो उसको कंपेयर करते पूरे लोक के कितने भाग है, वो असंख्यातवा भाग है। ऊर्ध्व लोक का कितवा भाग है, तो असंख्यातवा भाग है। अधोलोक की अपेक्षा उसको देखेंगे हम तो उसका असंख्यातवा भाग है। तिर्यक लोक का कितवा भाग है, तो असंख्यातवा भाग आदि जो है। मनुष्य लोक का कितना कहेंगे, तो संख्यातवा भाग कहेंगे, कि मनुष्य लोक में ही वो संयत राशि है। इसलिए तो चारों लोक या नहीं समझ में है ना, सामान्य लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, तिर्यक लोक, और मनुष्य लोक को छोड़ा उसके असंख्यात भाग में नहीं कहेंगे। इसलिए प्रमत्त संयत आदि राशियां चार लोकों के असंख्यात भाग क्षेत्र में रहती है। तथा अभी मानुष क्षेत्र के साथ कंपेयर करेंगे, मानुष क्षेत्र के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है। ये विदेहादि जहाँ जहाँ पाए जाते हैं कर्मभूमि में, वो जो क्षेत्र है वो 45 लाख योजन का संख्यात्वा भाग है। मानांतिक समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए जिस अभिष्ट संयत राशि का क्षेत्र लाना हो, उसे संख्यात प्रतरांगुलों से गुणित करके जो लब्ध आवे उसे सात राज्यों से गुणित करना चाहिए। क्या कहते हैं, अभी हमको प्रमत्त संयत का मारणातिक समुदाय का क्षेत्र निकालना है, तो क्या करेंगे, संख्यात प्रतरांगुल से गुणा करके और वो जहां तक फैलेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सात राज्यों से मल्टीप्लाई करना। क्यों अशोक भाई, कुछ सोच सकते हैं, मारणांतिक समुदाय सात राज्यों का कैसे होगा? हाँ, मध्य लोक में होगा, कहाँ तक जाएंगे, ऊपर तक, कहाँ तक, सिद्धशिला तक जा सकते। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं अश्विन भाई, सिद्धशिला में जाएंगे नहीं जाएंगे? विनोद भाई, आप कौन से देव तक जाएंगे, सर्वार सिद्धि तक। संयत जीव है ये मिथ्या दृष्टि नवे ग्रह तक जाएंगे तो हम कबूल करेंगे। वो तो संयत होंगे ही नहीं, यहाँ तो संयत राशि की बात चल रही है। नहीं कोई बात नहीं, हमें तो इतनी इन्हें बातें ख्याल में रखनी है, तो एक्सरसाइज है ना मन को, कि एक बात लेते तो दूसरी छूट जाती है। तो सात राज्यों क्यों लिया, क्योंकि मनुष्य लोक से सर्वार सिद्धि सात राज्यों, ये जो मुनिराज है वो कहीं तक भी पहले स्वर्ग से लेकर ऊपर कहीं भी जन्मेंगे, इसलिए पहले उनका प्रतरांगुल निकाला यानी क्षेत्रफल निकाला, और फिर उसके अभी जो जहां तक फैलेंगे उसको भी लेना उसमें, तो उसे सात राज्यों से गुणित करना चाहिए। इस कारण मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए संयत जीव मानुष लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में है। वो सात राज्यों तो असंख्यात गुणा हो गया, तो मारणांतिक समुद्घात करते हैं उनके प्रदेश फैले हुए मध्य लोक से लेकर, अभी मान लेते सर्वार सिद्धि में कोई उत्पन्न होने वाले तो वहां तक उन मुनि राजों के आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। पूरा नहीं, शरीर वो ऐसे फैलेंगे, आहार अकला एक सिंगल, अभी इसीलिए यहाँ लिखा ना प्रतर लिया, हाइट इंटू विड्थ लिया, और मल्टीप्लाइड बाय तीसरी डायमेंशन पूरा जहां तक फैला है उसको लिया। हाँ उतना फैला है, इसलिए संख्यात प्रतरांगुल लिया था। प्रतरांगुल का अर्थ ही होता है अंगुल गुणा अंगुल, हाइट इंटू विड्थ। और फिर यहाँ परिधि वगैरह वो नहीं निकाला, पूरा तीसरा डायमेंशन जहां तक फैले है उसको लिया, यानी सात राज्यों तक को लिया, मैक्सिमम लिया। इसका ही विशेषार्थ करते हैं। देखो यहाँ प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीवों का मानांतिक समुद्घात संबंधी क्षेत्र के लाने के लिए अभिष्ट राशि को, अभिष्ट यानी हम जो जिस संख्या की बात कर रहे हैं, इच्छित राशि को, इच्छित यानी प्रमत्त की राशि है क्या, अप्रमत्त की है या उपशम श्रेणी वालों की है, उसको कहेंगे अभिष्ट राशि। उसको संख्यात प्रतरांगुलों से गुणित करके, पहले राशि को संख्यात प्रतरांगुल को, क्योंकि एक जीव के इतने प्रतरांगुल तो उस राशि के कितने, गुणित करके पुनः सात राज्यों से गुणित करने का विधान कहा है, क्योंकि जहां तक फैले है वहां तक सात राज्य है मैक्सिमम, इसलिए सात राज्यों से गुणा करा तो उत्कृष्ट क्षेत्र हमें मिलेगा। इसका अभिप्राय यह है कि संयत जीव सौधर्म कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत तो उत्पन्न होते हैं। बहुनत्रिक में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे,
नहीं जाएंगे,
हाँ। और इसीलिए वे वहां तक मारणांतिक समुद्घात भी कर सकते हैं, जहां की आयु बांधी है वहां तक मारणांतिक समुद्घात भी होगा। सर्वार्थ सिद्धि मध्य लोक से लगाकर कुछ कम सात राजू ऊंची है, आठवीं पृथ्वी के नीचे है ना वो, तो वो सात राज्यों में थोड़ा कम है। तथा एक संयत की उत्कृष्ट अवगाहना भी, उन्होंने लिखा है उत्कृष्ट क्षेत्रफल भी, अभी यहाँ अवगाहना हम क्षेत्रफल में ही बताने बता रहे, तो अवगाहना का क्षेत्रफल जैसे ऊपर प्रतरांगुल में बताया, उन्होंने करेक्शन तो बताया है परंतु वो नहीं लिखे तो भी अर्थ वही होता है। देखो उत्कृष्ट अवगाहना भी संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण होती है, उन्होंने कहा उत्कृष्ट अवगाहना का उत्कृष्ट क्षेत्रफल भी संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण ही होता है, करना पड़ेगा, क्षेत्रफल डालेंगे बीच में तो होता है लिखना पड़ेगा। क्षेत्रफल प्रतरांगुल में आता है तो अवगाहना इतने प्रतरांगुल होता है, इतने प्रतरांगुल अवगाहना होती है, ऐसा जब कहेंगे तो वो क्षेत्रफल की ही बात है, भले वो आप उसमें लिखे रखो ठीक है। अतः उत्कृष्ट मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, उत्कृष्ट जिसने किया यानी जो सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले है उसकी अपेक्षा से सात राज्यों से संख्यात प्रतरांगुलों के गुणित करने का विधान किया गया है। एक संयत की उत्कृष्ट अवगाहना के प्रतरांगुल इस प्रकार आते हैं, यानी यहाँ भी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, अवगाहना का क्षेत्रफल निकाल रहे, प्रतरांगुल में बात की ना, जहाँ प्रतरांगुल में बात है वहाँ क्षेत्रफल समझना, दो डायमेंशन का गुणकार, और जहाँ घनांगुल कहेंगे तो तीन डायमेंशन, यानी उसको पूरा वॉल्यूम आ जाता है। उत्छेद है 500 धनुष, तो विष्कम्भ हमने मनुष्यों की अपेक्षा नौवा भाग लिखा, तो विष्कम्भों का 500 का नौवा भाग उतने धनुष। परिधि निकालना है तो परिधि इज इक्वल टू, वो बीच में इज इक्वल टू चिन्ह डाले तो अच्छा है, ये जो 500 / 500 / 9 × 16 इसको एक ब्रैकेट कर देना, प्लस 16 / 113, ये हमने पहले सूक्ष्म परिधि निकालने का जो फॉर्मूला 42 पृष्ठ पर दिया था उसकी अपेक्षा से ये कह रहे हैं। 500 / 9 × 16, ये पहले मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन करना है 16 की, इसलिए उसको ब्रैकेट करना अच्छा है। फिर उसमें और एक एडिशन करना, उसमें क्या मिलाना, 500 के नौवे भाग को तिगुना करना, 500 को 9 से जो भाग दिया था विष्कम्भ को तिगुना करना है, परिधि निकालना है ना, परिधि का फॉर्मूला हमने क्या किया था, विष्कम्भ को 16 से गुणा करो, उसमें 16 ऐड करो और उसको 113 से भाग करो और फिर उसमें विष्कम्भ का तिगुना मिला दो, तो ये जो संख्या आती है 177,644 / 1017, इतने धनुष होना चाहिए, वहां धनुष लिखो तो अच्छा है, परिधि है ना वो धनुष में आई। अभी उसका क्षेत्रफल निकालना है, हमें परिधि मालूम है, किसी भी गोलाकार का क्षेत्र निकालना है तो ये तो परिधि लिया, गुणा विषकंभ का चौथा भाग। तो अभी जो हमने संख्या निकाली ना धनुष में, उसको गुणा करना है 500 का नौवां भाग गुणा एक चतुर्थांश, तो इसकी संख्या आती है, ये जो है ना 8 8 8, 1 2 लिखा है, वो 2 2 चाहिए। हाँ, 2 2 किया है उन्होंने। पीछे लिखा क्या, इसमें करेक्शन नहीं है, 1 2 1 2 का किया, कहाँ किया, 2 2 किया। हाँ अच्छा, उसको वर्ग धनुष करना चाहिए, वर्ग धनुष, ये वर्ग धनुष आए। हाँ, नीचे भी करेक्शन है, हाँ वो 2 2 किया है, वो बराबर है उन्होंने, ये वर्ग धनुष आ गए, यहाँ वर्ग शब्द डालना। अब नीचे भी फिर वो 1 का 2 कर देना, 8 8 8 2 2 3 0, और उसमें भागाकार में 36 6 12, मल्टीप्लिकेशन में जो 96 है, 96 का वर्ग चाहिए, अंगुल से नहीं मल्टीप्लाई करना, प्रतरांगुल है ना अभी अपने, वर्ग धनुष आए हैं, वर्ग धनुष के हमको वर्ग अंगुल करना है, यानी प्रतर धनुष के प्रतर अंगुल करना है, नहीं समझे, देखो 2 × 2 फीट हमारे पास है, 2 × 2 4 स्क्वायर फीट है, 4 स्क्वायर फीट के हमको अभी इंच करना है, तो कितने से गुणा करना है इंदुबेन, 12 से गुणा करेंगे नहीं चलेगा, 12 के वर्ग से गुणा करना पड़ेगा, 144 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होगा, 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 4 48 आ जाएंगे, और यहाँ हम अभी 2 फीट के यहाँ कितने हो गए, 24 इंच हो गया, और यहाँ 24 इंच, 24 × 24 कितने होते हैं, 12 × 4 = 4, हाँ 144 × 4, पहले हमने वही निकाला था, 4 को 144 से गुणा करना, तो 1 फीट के 12 और 1 स्क्वायर फीट के 12 का वर्ग, ऐसे यहाँ भी लगाना, एक धनुष के 96 अंगुल होते हैं, तो एक वर्ग धनुष के यानी प्रतर धनुष के 96 का वर्ग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, तो 96 का वर्ग इतने अंगुल होते हैं, उसको प्रतरांगुल कहेंगे, तो ये करेक्शन किया, 8 8 8 2 2 3 0 डिवाइडेड बाय 36612 इंटू 96 का वर्ग कर देना, वहाँ इज इक्वल टू, ये जो संख्या उन्होंने लिखी है वो जो करेक्शन किया उसमें भी करेक्शन है। हाँ, 3 0 कैसे आ सकते, मुझे बोला बताओ, अंत में कितने 0 आने चाहिए, नहीं 3 0 आएंगे, आएंगे आएंगे आएंगे, हाँ वो मैंने 2 0 लेकर मैंने किया, क्या किया मैंने, गड़बड़ कर दी कुछ, एक मिनट, हाँ हाँ 3 0 हो जाएगी, बराबर है, हाँ फिगर चेंज, 8 1 8 5 8 3 5 5 2 0 0 और 0, इतने प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय 36 612, बराबर है बराबर है, उन्होंने जो करेक्शन बताया है, करेक्शन आपने लिखा है, देखो 8 1 8 5 8 3 5 5 2 0 0 0, हम आगे पढ़ेंगे अभी। सर्व संयत राशि का प्रमाण हमने देखा ना, आदि में ये राइट साइड से सात, यहाँ आठ और बीच में छह बार नौ लिखो। पूर्ण संयत राशि का प्रमाण हमने निकाला था। यानी 8,99,99,997, 3 + 9 करोड़ आसान है। पूर्ण संयत राशि छठे से चौदहवें तक कितनी है? 3 + 9 करोड़, उत्कृष्ट संख्या। इसमें से प्रमत्त आदि गुणस्थानों की यथायोग्य राशि के संख्यात्वे भाग प्रमाण राशि ही मानांतिक समुद्धात करती है। हमने देखा था सभी जीव मानांतिक समुद्धात नहीं करते, संख्यात्वे भाग जीव ही मानांतिक समुद्धात करते। आप ही बताओ कौन लेंगे, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं करेंगे? द्वितीय ऑप्शन मरण नहीं, कौन किसने कहा? प्रथम ऑप्शन में मरण नहीं होता, उपशम श्रेणी में तो सर्वत्र मरण है, आठवें के पहले भाग को छोड़कर। शपक श्रेणी में मरण नहीं होगा, तो शपक श्रेणी वाले मारणांतिक समुदाय करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ देखो, अतएव उससे पूर्व में निकाले गए एक अवगाहना के प्रतरांगुलेन से गुणित करने पर, ये ना अवगाहन के प्रतरांगुल, ये जो करेक्शन उन्होंने क्षेत्र क्षेत्र लिखा था, क्षेत्रफल, ये यहाँ नहीं लिखा। जब अवगाहना के प्रतरांगुल कहते हैं तो उसका अर्थ ही क्षेत्रफल की बात चल रही है। उस पर भी संख्यात प्रतरांगुल ही होते हैं। इस प्रकार मानांतिक समुद्घात को प्राप्त समस्त संयतों का क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुल गुणित सात राजू होता है, जबकि तिर्यक लोग 1,00,000 योजन के सातवें भाग प्रमाण मोटे जगत प्रतर प्रमाण है। ये हमने कल निकाल के देखा था, जगत प्रतर गुणा लाख का सातवां भाग, क्योंकि तिर्यक लोग कितना, 1 राजू × 7 राजू × 1,00,000 योजन, तो 1 राजू को हमने 7 गुणा कर दिया तो लाख को सातवां भाग कर दिया। कल ये इसकी बात की थी, वही बात यहाँ बता रहे। यानी तिर्यक लोग कितना है तो लाख योजन के सातवें भाग इतना जगत प्रतर है। जगत प्रतर में हम इसको पुटअप करेंगे तो, अतः उक्त मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र चारों लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है, तथा मनुष्य लोग 45,00,000 योजन चाहिए, चौड़ा और 1,00,000 योजन ही ऊंचा है। अतः संयतों का मारणांतिक क्षेत्र मनुष्य लोक से असंख्यात गुणा सिद्ध होता है, क्योंकि वो तो सात राजू, राजू तो कितने असंख्यात गुणा है ना, इसलिए वो बड़ा हो जाता है क्षेत्र। इस प्रकार उक्त क्षेत्र स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना कषाय, वैक्रीयक, आहारक और मारणांतिक समुदात वाले जीवों का कहा। किसका? संयतों का। अभी संयतों में कौन कौन से समुदात लिए देखो, उक्त क्षेत्र, हाँ, स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत, वेदना कषाय, वैक्रीय, कारक, मारणांतिक समुद वाले, इतनी विशेषता है। अब और एक विशेषता बता कि तेजस समुद्घात के 9 योजन प्रमाण विष्कम्भ और 12 योजन प्रमाण आयाम क्षेत्र के किए हुए अंगुलों का परस्पर गुणा करके, यानी 12 योजन और यह 9 योजन, उसके अंगुल करके पहले, बाद में उनको गुणा करना आपस में, 1 योजन के अंगुल करना। 1 योजन के अंगुल कितने देखे थे कल? 7,68,000। तो 12 गुणा उतने, 9 गुणा उतने, और बाद में उसका आपस में गुणाकार करो, तो इतने सूक्ष्मांगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण बाहुल्य से गुणित करने पर तेजस समुद्घात का क्षेत्र होता है। ये सूक्ष्मांगुल का संख्यात्वा भाग, उसमें वो जो कंटिन्यूटी होगी, वो इसे इसके योग्य संख्यात से गुणित करने पर तेजस समुद्घात के सर्व क्षेत्र का जोड़ होता है। एक जीव के इतने तो अनेक जीवों के कितने, यहाँ पर अपवर्तना पहले के समान जाननी चाहिए। यानी मुनिराजों में कौन कौन सी बातें हैं क्षेत्र में, स्वस्थान स्वस्थान विहार व स्वस्थान, उनके भी विहार होगा ना। हाँ, फिर वेदना है, कषाय है, वैक्रियक भी होगा, आहारक है, मारणांतिक है, अब तेजस भी होगा। हाइट सूचंगुल का संख्या तो भाग लिया, प्रमाण अंगुल के संख्या तो भाग लिया होगा बाहल्य से गुणित करने पर। अब स्वस्थान स्वस्थान और विहार व स्वस्थान रूप से परिणत अप्रमत्त संयत जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। सामान्य लोक का असंख्यात भाग कहो, या ऊर्ध्व लोक का, या अधो लोक का, या तिर्यक लोक का। चार लोक यानी कौन कौन से? सामान्य लोक, ऊर्ध्व लोक, अधो लोक, तिर्यक लोक। मनुष्य लोक का संख्यात्वा कहेंगे अभी, और मानुष क्षेत्र के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए अप्रमत्त संयतों का क्षेत्र मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए प्रमत्त संयतों के क्षेत्र के समान होता है। छठे और सातवें में कुछ खास डिफरेंस है। अप्रमत्त संयत गुणस्थान में उक्त तीनों स्थानों को छोड़कर शेष स्थान नहीं होते। शेष यानी कौन कौन से नहीं होते? हाँ, वेदना समुदात, कषाय समुदात, वैक्रियक समुदात, आहारक समुदात, तेजस समुदात, ये नहीं होते। सातवां गुणस्थान है ना, ये छठे में होता है वो कार्य, सातवें में नहीं होता। विहार वो तो उनका हमेशा का ये जाने का ठहरने का, वो तो छठा सातवां गुणस्थान में है ना, वो तो छठा सातवां चलता रहता है। अप्रमत्त की ऐसे थोड़े बैठेंगे, जैसे आहार को जा रहे, छठा सातवां चलता रहता है। एक गांव से दूसरे गांव में जाए तो दो घंटे उनके के छठा ही चलेगा क्या? छठा सातवां तो कंटिन्यूस है उनका, इसलिए विहार व्रत को ले लिया। उपशम श्रेणी के चारों गुणस्थान वर्ती उपशामक जीव स्वस्थान स्वस्थान और मारणांतिक समुदाय इन दोनों पदों में, इनमें विहार व्रत नहीं लिया उपशम श्रेणी वालों को। श्रेणी में आरूढ़ तो वो तो चलते फिरते वो ऐसा नहीं होगा, जैसे सातवां गुणस्थान छठा गुणस्थान चलते यानी कंटिन्यूटी में चलता रहता है, वैसे जो उपशम श्रेणी के गुणस्थान है वो तो ध्यानावस्था में ही हो गए। तो उनके दो ही है, स्वस्थान स्वस्थान और मारणांतिक समुदाय। मरण तो होगा उपशम वालों का कि नहीं होगा? हाँ इंदुबेन, हाँ अभी हमने बात की थी ना। हाँ, उपशम श्रेणी में मरण किसको नहीं होता? मैंने अभी बताया भी था, आठवें के पहले भाग में चढ़ने वाले के, उतरने वाले की नहीं। उतरने वाले को तो सर्वत्र मरण होगा, चढ़ने वाले के आठवें के प्रथम भाग में। हाँ, तो उपशम श्रेणी के चारों गुणस्थानवर्ती उपशामक जीव स्वस्थान स्वस्थान और मारणांतिक समुदाय इन दोनों पदों में स्वस्थान स्वस्थान और मारणांतिक समुदायगत प्रमत्त संयतों के समान होते हैं। उनकी भी अवगाहना उसी मेथड से निकालना। क्षपक श्रेणी के चार गुणस्थानवर्ती क्षपक उनमें होगा कि मारणांतिक समुदाय नहीं होगा? तो उनमें कौन कौन से हो गए? स्वस्थान स्वस्थान ही होगा। हाँ, और अयोगी केवल जीवों का स्वस्थान स्वस्थान प्रमत्त संयतों के स्वस्थान स्वस्थान के समान होता है। यानी एक जीव की इतनी अवगाहना तो इतने जीवों की कितनी, अकेला एक ही उसमें होगा। सहयोग केवली को इसमें से निकाला है, अलग रखा है। उनके तो समुद्घात भी होता है, केवली समुद्घात, तो उनका पूरा क्षेत्र लोक का जितना है उतना आ जाएगा। क्षपक और उपशामक जीवों के उक्त स्थानों के अतिरिक्त शेष स्थान नहीं होते। अभी अभी जो हमने देखे, उपशम वालों के स्वस्थान और मारणांतिक, और क्षपक वालों के अकेले स्वस्थान। शंका, यह मेरा है इस प्रकार के भाव से रहित क्षपक और उपशामक जीवों के स्वस्थान स्वस्थान नाम का पद कैसे संभव है? क्योंकि पहले समझाते समय लिया था ना, ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, ये तो वो उसका स्वस्थान क्षेत्र हुआ, तो ये प्रश्न भी यहाँ पूछ रहे। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जिन गुणस्थानों में यह मेरा है इस प्रकार का भाव पाया जाता है, वहाँ वैसा ग्रहण किया है। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में या पहले इवन चौथे में भी कहेंगे ये मेरा देश है, तो ये अपने घर में रहेगा, उस अपेक्षा से वहाँ बात की थी। परंतु यहाँ पर अर्थात क्षपक और उपशामक गुण स्थानों में अवस्थान मात्र का ग्रहण किया गया है। अवस्थान मात्र ने जहाँ वे ठहरे हैं बस उतना क्षेत्र का ग्रहण किया है। अब सहयोगी की बात करेंगे, सूत्र पढ़ेंगे चौथा नंबर का। सहयोगी केवली केवड़ी खेतते लोगस्य असंख्येज यदि भागे असंख्येजेषु वा भागेषु सव लोगे वा। तीनों ही अपेक्षा बता दे, क्या कहते हैं? सहयोग केवली जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में। तेरहवें गुणस्थान वाले जीव वो असंख्यातवे भाग क्षेत्र, क्योंकि वो मनुष्य लोक का भी संख्यातवा भाग हो जाएगा। फिर अथवा लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र में, ये कब होगा? असंख्यात बहुभाग, असंख्यात बहुभाग कौन सा समुद्र? प्रतर में ही होगा। कपाट भी संख्यात भाग हो जाएगा। प्रतर में असंख्यात बहुभाग, अकेला वात वाले को छोड़कर। अथवा सर्वलोक में, अब ये लोक पूरण वाला समुद्र। तीन अपेक्षा बताई ना, लोक के असंख्यात भाग में या असंख्यात बहुभाग में या पूरे लोक में। यहाँ पर सहयोगी केवली का स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान क्षेत्र, उनको विहार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आप कहते हैं हाँ, समोचरण वगैरह लगता है ना, उनका विहार है उनके। स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान क्षेत्र प्रमत्त संयतों के स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान क्षेत्र के समान होता है, क्योंकि शरीर की अवगाहना तो वही रहेगी जो प्रमत्त संयतों से हमने ली है, तो उसकी अपेक्षा से हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवली जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? दंड यानी कितना? 14 राज्यों में थोड़ा कम, और वो कितना? 12 अंगुल या 36 अंगुल वाली वो विषकंभ वाला, तो उसकी अपेक्षा उसका जो क्षेत्रफल घनफल निकलेगा। तो कहते हैं सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में। देखो दंड वाले और कपाट वाले को भी दंड वाले को असंख्यात भाग कहा है, क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे। वो तो 343 राज घन राजू है पूरा, हाँ, और ये 14 राजू मल्टीप्लाइड बाय कुछ अंगुल, और अढ़ाई द्वीप संबंधी लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में है। मनुष्य लोक की अपेक्षा असंख्यात गुणा है, परंतु पूरे लोक की अपेक्षा से असंख्यात भाग है। शंका, दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवलियों का उक्त क्षेत्र कैसे संभव है? तो निकाल के दिखलाएंगे अभी उसका समाधान। उत्कृष्ट अवगाहना से युक्त केवलियों का उच्छेद 108 प्रमाण अंगुल होता है। 525 धनुष हमने देखा था ना, तो 525 धनुष है वो तो उच्छेद धनुष हो गए, उच्छेद अंगुल से आया हुआ। तो एक धनुष में हमने कितने अंगुल देखे थे? 7, एक योजन में देखा था, एक एक इसकी बात चल रही है। छियानवे हमने क्या देखा था? 96 देखा था ना, एक धनुष में 96 अंगुल होते हैं। देखो मैं कुछ गड़बड़ी होगी बोलने में तो मैं फिर बोलती हूँ। यहाँ हमको उत्कृष्ट जो उच्छेद बताया है, हाँ, तो कितने? 500 धनुष बताए बराबर, या 525 धनुष है उत्कृष्ट अवगाहना, अभी अभी हमने पढ़ी थी। तो 525 धनुष है, तो उसके अंगुल कितने हो गए? मल्टीप्लाइड बाय 96, मल्टीप्लाइड बाय 96 और डिवाइडेड बाय 500 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाण अंगुल की बात है ना यहाँ, तो एक्चुअली उसका 96 में और थोड़ा कुछ 100 के आसपास होना चाहिए, परंतु यहाँ 108 बताया है। हम इसी मेथड से देखेंगे 108 प्रमाण अंगुल। बैठे हुए तो उसकी बात नहीं ना, उससे देने पूरा ही लेना है ना। दंड में तो बैठे हो या वो विष्कम्भ में फर्क पड़ेगा, हाइट में नहीं। देखो पहले सुनो, ये गणित पहले सुनो पूरा गणित। हाँ, 108 जो प्रमाण अंगुल है, अभी उसका विष्कम्भ कितना होगा? उच्छेद का 9वां भाग, उसका 9वां भाग अर्थात 12 प्रमाण अंगुल विष्कम्भ होता है। ये 12 प्रमाण अंगुल निकालने के लिए उन्होंने वहाँ 108 गिन लिया। हाँ, इन जनरल वैसे 100 और कुछ ऐसा थोड़ा आता है। इसकी परिधि 37 अंगुल और एक अंगुल के 113 भागों में से 95 भाग प्रमाण होते हैं, यानी 37.95/113 परिधि। इसे विष्कम्भ 12 अंगुल के चौथे भाग 3 अंगुलों से गुणित करने पर, यह हमें क्षेत्रफल में, ये परिधि के हुए गोलाकार क्षेत्रफल मिलेगा। मुखरूप 12 अंगुल लंबे और 12 अंगुल चौड़े गोल क्षेत्र के प्रत्रांगुल होते हैं। इन्हें कुछ कम 14 राज्यों से गुणित करने पर दंड क्षेत्र का प्रमाण होता है। दंड क्षेत्र इन्हें गोलाकार जो खंबे जैसा है उसको दंड क्षेत्र कहते हैं। इस तरह से 12 अंगुल विष्कम्भ वाले की हमने परिधि निकाली, फिर उसका क्षेत्रफल निकाला, मल्टीप्लाइड बाय कुछ कम 14 राज्यों से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमको दंड क्षेत्र निकाला। पूरा घनफल में दंड का घनफल निकला। हाँ, यह एक केवली के दंड क्षेत्र का प्रमाण हुआ। ऐसे जितने केवली है दंड करने वाले उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी को फिर दोबारा समझाते हैं। व्यास 12 अंगुल है, अतएव गाथा नंबर 14 के अनुसार उसकी परिधि का प्रमाण पहले भी हमने देखा था, 12 × 16। पहले इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, प्लस 16। ये वैसे भी हमको मालूम है कि ये गुणा पहले करना है, डिवाइडेड बाय 113 प्लस 36, 12 का 3 गुणा करके उसका उत्तर 42.76/113 है, और उसका पूर्णांक में 37.95 113 अंश अंगुल आते हैं। ये परिधि है ना, ये तो सिंपल यानी सूचंगुल है। अब उसका क्षेत्रफल निकालना है, गोल का क्षेत्रफल निकालना है, तो परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुणा करेंगे, तो परिधि गुणा व्यास का चतुर्थांश, उसका उत्तर आया है 12,828/113। ये प्रत्रांगुल में आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है, जिसको स्क्वेयर फुट जैसे हम कहते हैं वैसे स्क्वेयर अंगुल आ गई है। अतएव दंड समुद्घातगत केवली का क्षेत्र प्रमाण, अभी इसको 14 राज्यों से थोड़ा कम से गुणा करेंगे, तो वही लिखा 12,828/113 गुणा देशों ने 14 राजू, देशों ने कुछ कम, कुछ कम में किसको कम किया?
वातवले।
कितना कितना? 60,000 योजन, वो आएगी बात आगे, विशेषार्थ। यहाँ पर दंड समुद्घातगत क्षेत्र का प्रमाण केवली की उत्कृष्ट अवगाहना 108 प्रमाण अंगुल लेकर बतलाया है, किंतु इससे पूर्व ही केवली की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष प्रमाण कही गई है। चूंकि उच्छेदांगुल से प्रमाणांगुल 500 गुना होता है, इसलिए 525 धनुष के प्रमाणांगुल 525×96/500=100.45 होते हैं। हमने देखा ना, वो तो राउंड अबाउट 9वां भाग करने के लिए उन्होंने उसको 108 कर दिया। वर्तमान प्रकरण में विधेय क्षेत्र की संयत राशि प्रधान है, अतएव यदि विधेय संबंधी अवगाहना ली जाए तो वह 500 गुणा 96 डिवाइडेड बाय 500 96 प्रमाणांगुल ही होती है। 108 प्रमाणांगुल के धनुष 108 वो गुणा करना, अधिक का चिन्ह है वो गुणा करो, 108 गुणा 500 डिवाइडेड बाय 96 इज इक्वल टू 562 पूर्णांक एक द्वितीयांश होते हैं, जो उक्त 525 धनुष के प्रमाण से बढ़ जाते हैं। इस वैषम्य का कारण विचारणीय है, यानी स्वयं वो शास्त्री ये जो है ना भाषांतर कर, नहीं नहीं भाषांतर करने वाले, समाधि सही है, पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख कहा था ना हमने, यानी वो ध्यानावस्था हाइट कहाँ निकाली, 500 धनुष विष्कम्भ निकालने के लिए लिया, आप नहीं समझे, दंड समुद्घात में हाइट का प्रश्न कहाँ आया, पूरे ही 14 राजो हाइट है उनकी, वो बराबर है, तो आपका प्रश्न क्या है, उसमें 36 अंगुल कहेंगे हम, 36 गुना नहीं, 36 से हमने वो 36 से तो गुना करते ही नहीं किसी से, 12 के द्वारा हमने परिधि निकाली, सरकमफेरेंस निकाला, और सरकमफेरेंस निकाल कर वो गोल कितना है उसका क्षेत्रफल निकाला, हाइट तो सबकी 14 राजू ही है, हाइट में कोई फर्क नहीं है, बैठे हुए के भी 14 राजू ही से मल्टीप्लाई किया है, क्षेत्रफल निकालने के लिए वो बड़ा कम है, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं है, क्षेत्रफल तो 36 अंगुल का विष्कम्भ लिया, डायमीटर 36 अंगुल को लेंगे, यानी खड़े हुए के जो दंड ऐसा छोटा होगा ऐसा, और बैठे होंगे ऐसा होगा, खाली तिगुना बड़ा नहीं, विष्कम्भ तिगुना है, परिधि और वो क्षेत्रफल और सब सभी ओर से बड़ा हो जाएगा वो। देखो, एक साथ समुद्घात करने वाले संख्यात केवलियों के दंड क्षेत्र का प्रमाण लाने के लिए इसे संख्यात से गुणित करें, एक साथ जितने केवली दंड समुद्घात करते उनको 40, क्योंकि फैलाने वाले और समेटने वाले हमने पहले देखे थे, इस प्रकार जो क्षेत्र उत्पन्न हो उसे त्रैराशिक के क्रम से सामान्य लोक आदि 4 लोकों से भाजित करने पर जितना क्षेत्र है ना, अभी हमने जो निकाला इतना लास्ट पेज पर, एक समुद्घात गत केवली का क्षेत्र इतना, 20 का है 40 का इतना, तो ये जो क्षेत्र है वो पूरे लोक का कितना भाग है, ऐसा अगर निकालेंगे तो चारों लोकों में से प्रत्येक लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण दंड क्षेत्र आता है, तथा उक्त दंड क्षेत्र को मानुष लोक से भाजित करने पर, पहले दंड क्षेत्र से पूरे लोक को भाजित किया था, अब मानुष क्षेत्र छोटा है और दंड क्षेत्र बड़ा है, तो दंड क्षेत्र को मानुष क्षेत्र से भाजित करने पर असंख्यात मानुष क्षेत्र लब्ध आते हैं, यानी मनुष्य लोक से असंख्यात गुणा और अन्य 4 लोकों से असंख्यात वे भाग, ये सिद्ध हुआ ना यहाँ पर। इतनी विशेषता है कि पल्यंकासन यानी पद्मासन, पल्यंकासन बैठे हुए, पल्यंकासन से दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवली का विष्कम्भ, विष्कम्भ की बात है, पहले कहे हुए 12 अंगुल प्रमाण विष्कम्भ से तिगुणा होता है, तो 36 विष्कम्भ लेंगे और फिर आगे वाला जो परिधि वगैरह वो उसके हिसाब से निकालेंगे, उसका प्रमाण 36 अंगुल है, इसकी परिधि 113 अंगुल और एक अंगुल के 113 भागों में से 27 भाग प्रमाण है, यानी 113 पूर्णांक 27 डिवाइडेड बाय 113 है। उदाहरण यही उनको फिर बताते हैं, व्यास 36 है, अतएव गाथा नंबर 14 के अनुसार परिधि का प्रमाण 36 गुना 16 प्लस 16, ये भी हमने समझने के लिए अपने वो ब्रैकेट कर सकते हैं इसको, 36 गुना 16 पहले गुणाकर करना बाद में 16 मिलाना, उसको 113 से भाग देना, उसमें 36 गुना 3 108 मिला देना, तो 113 पूर्णांक 27 डिवाइडेड बाय 113 आते हैं, शेष कथन पूर्व के समान है। अब ये दंड समुदात की बात हो गई। अब कहेंगे ये विशेषार्थ में उन्होंने बताया, विशेषार्थ ने ये जो कोई जो हीराचंद जी जैन या फूलचंद जी शास्त्री है उन्होंने कहा, ये जो पता ये विचार नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिख सकते कि ये गलत है, ख्याल है ना। तो अभी हमने उसमें से निकाला ना तरीका, वो नौवा भाग बताने के लिए 108 लिया होगा उसको राउंड फिगर करने के लिए। अब कपाट समुदात की बात है, कपाट समुदात में कितना होगा, आड़ा फैलागे, आड़ा फैलेंगे ना, पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख, ऐसे दो अलग अलग उत्तर आएंगे उसके, क्षेत्र निकालते समय दो अलग अलग क्षेत्र आएंगे, ऐसी एंटीरो पोस्टीरियर जिसको कहते हैं, वो 12 अंगुल जो उभे यानी खड़े हैं उनके, और बैठे उनके 36 अंगुल विष्कम्भ वाला होगा, और पूरा यहाँ तक फैला है, यानी अभी इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है ना, तीन डायमेंशन है, पूरी हाइट कितनी है, कुछ कम 14 राजू, ऐसा कितना फैला है, जो पूर्व की ओर मुख है वो दक्षिणोत्तर 7 राजू सर्वत्र फैला है, तो 14 राजू गुना 7 राजू, और ऐसे गुना 12 अंगुल, और जो उत्तर की तरफ मुंह किया है हाँ, तो उसका कम ज्यादा है, जैसे हम लोकाकाश का आकार बताते हाँ, वो बात आएगी अभी। यहाँ कपाट समुदात को प्राप्त हुए केवल कितने क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में, ये कपाट ये लोकाकाश के अंत तक फैलते हैं, परंतु ये वीर्थ उसके 12 अंगुल ही है, 7 राजू कहाँ और 12 अंगुल कहाँ, है ना, तो ये असंख्यात भाग है। तीर्यक लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में, तीर्यक लोक का संख्यात भाग लिया, तीर्यक लोक कितना है, जगत प्रतर गुणा कुछ अंगुल हमने देखा था, 1 लाख का सातवां भाग, 1 लाख योजन का, उसको हम अंगुल में करेंगे तो कुछ संख्यात अंगुलों में, और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर कपाट समुदात को प्राप्त हुए केवली का क्षेत्र लाने का विधान, अभी उसका क्षेत्र लाकर बताएंगे। केवली जिन पूर्वाभिमुख यानी पूर्व की ओर मुंह करके ध्यान में बैठे, वो पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर समुद्घात को करते हुए यदि पल्यांकन से समुद्घात को करते हैं, तो कपाट क्षेत्र का बाहल्य 36 अंगुल होता है, उसकी मोटाई 36 अंगुल, और फैला कितना है, तो लोकाकाश के अंत तक, ऐसा 36 अंगुल और ऐसा पूरा हॉरिजॉन्टल पूरा फैला। और यदि कायोत्सर्ग से यानी खड़गासन से कपाट समुद्घात करते हैं, तो 12 अंगुल प्रमाण बाहल्य वाला कपाट समुद्घात होता है। इनमें से पहले पूर्वाभिमुख केवली के कपाट क्षेत्र के लाने की विधि का कथन करने पर 14 राजू लंबे, अभी 14 राजू कहने में बात वाले को छोड़कर 14 राजू, 7 राजू चौड़े, क्योंकि दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 राजू है, पूर्व की तरफ मुंह है तो दक्षिणोत्तर फैले है प्रदेश, और 36 अंगुल मोटे क्षेत्र को स्थापित करके उसे 14 राजू लंबाई में से बीच में 7 राजू के ऊपर छिन्न करके एक क्षेत्र के ऊपर दूसरे क्षेत्र को स्थापित कर देने पर 72 अंगुल मोटा जगत प्रतर हो जाता है। जगत प्रतर में इनको आंसर चाहिए, कितने जगत प्रतर है इतना बताना है। देख अभी हम किसके पूर्वाभिमुख वाला है यानी उत्तर दक्षिण उसके प्रदेश फैले हैं, तो 14 राजू ऊपर से नीचे है, सर्वत्र सात राजू फैले हुए हैं और उनकी मोटाई कितनी है? 36 अंगुल, बराबर। यह ऐसा कपाट समुदात हुआ है। 14 राजू, 7 राजू और ये 36 अंगुल। अब हमको जगत प्रतर में उसका हिसाब चाहिए। जैसे हमने वो एक राजू गुना सात राजू गुना एक लाख था, तो एक राजू को तो सात राजू कर दिए और उसको एक लाख को सात से डिवाइड किया, तो हमें जगत प्रतर में उसका उत्तर आया। तो यहाँ अपने पास तीन फिगर्स है, 14 राजू गुणा 7 राजू और गुणा 36 अंगुल। तो अभी हमको इसको 14 के बदले 7 करना है, इसके यहाँ इस ये डिवाइड किया है, तो डिवीजन में कहीं पर रख दो उसको, यहाँ डिवाइड किया है नहीं, कम किया है तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 7 गुना 2 अलग करो ना, इसको 14 को 7 गुना 2 कर दो, तो ये 2 गुना हम यहाँ लिखेंगे तो 72 अंगुल हो जाएगी, यानी 7 राजू गुना 7 राजू गुना 72 अंगुल, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जगत प्रतर गुना 72 अंगुल। जगत प्रतर को लेना हमको, क्षेत्रफल निकालना है, तो जगत प्रतर कितने जगत प्रतर लेना, 72 अंगुल में जितने प्रदेश है उतने। देखो यहाँ 14 थे, रहने दो ना राजू, इसको आधा किया तो यहाँ डबल करना पड़ेगा। देखो 14, ये अंगुल के प्रमाण में नहीं करना है उसको, कितने जगत प्रतर है उतना करना है। ऐसे किया था ना हमने, वो योजन में थे, 1 लाख योजन। हाँ, उन्होंने कहा कि वो छिन्न करके उन्होंने ऐसा बताया कि ये 14 राजू है, वो इसके बाजू में बताया, दो किए उन्होंने, 7 राजू बाय 7 राजू, ये हो गया ना 7 राजू बाय 7 राजू, और ये भी 7 राजू बाय 7 राजू। अब ये यहाँ से निकाल कर फोल्ड करके यहाँ नीचे रखो, तो क्या हुआ, 7 राजू बाय 7 राजू बाय 72 राजू। स्पंज अभी हमने फोल्ड किया, हाँ तो ये इसकी विरुद्ध। ये समझ में है, हाँ, छिन्न करके उसको स्थापित कर देने में 72 राजू वगैरह वगैरह। और कायोत्सर्ग से पूर्वाभिमुख, अभी कायोत्सर्ग वाले की कितना है, 12 अंगुल, और पूर्वाभिमुख है उस केवली का कपाट क्षेत्र 24 अंगुल मोटा जगत प्रतर होता है। अभी ये ख्याल में है ना, 24 अंगुल इतने जगत प्रतर, जगत प्रतर कितनी बार लेना है, जगत प्रतर गुणा 24 अंगुल। जैसे हम वो जगत श्रेणी को असंख्यात गुणा करते थे, विषकम्भ सूची निकालते थे, वैसे यहाँ जगत प्रतर को गुणा कर रहे हैं, क्षेत्र की बात चल रही है। अभी उत्तराभिमुख की बात चलेंगे, पहले पूर्वाभिमुख है तो दक्षिण उत्तर प्रदेश फैले थे, उत्तराभिमुख है तो पूर्व पश्चिम प्रदेश फैलेंगे। कहाँ पर, 12 का 2 गुना कितना होता है, हाँ तो 24 अंगुल। हाँ यह लिखा है ना, आपको प्रश्न कहाँ से आया, आप कहीं ऊपर देखते हैं कहीं पर, बीचों बीच 24 अंगुल लिखा है, उसके आगे उत्तराभिमुख होकर पल्यंकासन से समुद्घात को प्राप्त हुए केवली का कपाट क्षेत्र 36 अंगुल मोटा जगत प्रतर प्रमाण होता है। वहाँ डबल नहीं करना, वो क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ का शेप कैसा है, इस तरह से पहले हम सर्वत्र 7 राजू देखा था, अब यहाँ कितना क्षेत्र है, देखो ये 7 प्लस 1 8 प्लस 5 13 एक 14 डिवाइडेड बाय 4, यानी अभी गुना 14 गुना 14 बाय 4 तो ये 7/7 ही होते, जगत प्रतर प्रमाण ही आता है, और उसको डायरेक्ट 36 से गुणा करो, 36 36 जगत प्रतर, 36 अंगुल जगत प्रतर, यानी उसके आधा होगा। उत्तराभिमुख है तो कपाट का क्षेत्र आधा होता है। तथा इतर का यानी उत्तराभिमुख होकर कायोत्सर्ग के समुद्घात करने वाले केवली का कपाट क्षेत्र 12 अंगुल मोटा जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि वेदना समुद्घात को छोड़कर जीव के प्रदेश तिगुणे नहीं होते हैं। यहाँ कुछ बताने का यानी 12 अंगुल बाहुल्य क्यों है वो बताने के लिए बताया उन्होंने। 12 अंगुल बाहुल्य क्यों लिया, ज्यादा क्यों नहीं लिया, तो ज्यादा बाहुल्य वेदना समुदात में होता है, इतना बताने के लिए 12 अंगुल का बाहुल्य लिया। ऊपर लिखा देखो, इयरस 12 अंगुल बाहुल्यम वेदनाए विना तिगुणता अभावा। यह उपरयुक्त यानी ऊपर बताया हुआ कपाट समुद्घातगत केवली का क्षेत्र त्रैराशिक क्रम से सामान्य लोक आदि तीनों लोकों के प्रमाण रूप से करने पर उन तीन लोकों में से प्रत्येक लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। क्यों, देखो पूरा लोक कितना है, कितने जगत प्रतर प्रमाण है, तो जगत प्रतर को 7 राजू से गुणा करो, इतना है पूरा लोक। और यहाँ कपाट का क्षेत्र जगत प्रतर को खाली 72 अंगुल से गुणा करो, या 36 से करो, या 24 से गुणा, या 12, जो कुछ है वो, इतना उसमें डिफरेंस है, इसलिए उसको कहते हैं असंख्यात विभाग। तिर्यक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि तिर्यक लोक कितना देखा था हमने, जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय लाख योजन का 7वां भाग, यानी तिर्यक लोक बड़ा है कि कपाट समुदाय बड़ा है। देखो तिर्यक लोक कितना है, जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय 100,000 योजन का 7वां भाग, योजन का 7वां भाग, और ये तो 72 अंगुल है मैक्सिमम, ख्याल है डिफरेंस, इसलिए तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग कहा, ये संख्यात में होगा प्रोपोर्शन, वहां लाख योजन का 7वां भाग है और यहाँ 72 अंगुल या जो कुछ है वो संख्यात में प्रोपोर्शन है, और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणा है, 2.5 द्वीप का क्षेत्र जो है 4,500,000 योजन मल्टीप्लाइड बाय 100,000 योजन, 4,500,000 स्क्वायर योजन, उससे ये असंख्यात गुणा है, क्योंकि ये तो जगत प्रतर में है और वो तो प्रतर योजन में संख्या है। हाँ, ये ख्याल है, हमेशा ये 4 लोकों के या 5 लोकों के साथ कंपेरिजन होगी, तो उसका असंख्यात अभाग है क्षेत्र की अपेक्षा, संख्या तो भाग है कि उससे संख्यात गुणा है कि कैसा है वो बता रहे, हमेशा क्षेत्र निकाल कर फाइनल में क्या बता रहे, सामान्य लोग का वो कितवा भाग है ये बात बता रहे। प्रतर समुद्घात को, अभी प्रतर समुद्घात की बात कर रहे, प्रतर समुद्घात यानी वात वलय को छोड़कर, प्रतर समुद्घात को प्राप्त हुए केवली जिन कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र में रहते, अभी बहुभाग लिया, अभी तक दंड और कपाट में असंख्यात भाग में लिखा था, प्रतर में असंख्यात बहुभाग लिया और लोकपूरण में पूरा लोक ले गए। लोक के असंख्यात भाग प्रमाण वात वलय से रुके हुए क्षेत्र को छोड़कर लोक के शेष बहुभागों में रहते हैं, यह इस कथन का अभिप्राय है। वात वलय जो पूरे लोक को घेरा हुआ है, उस वात वलय की बात है। अंदर अंदर भी दो दो पृथ्वियों के बीच में जो कुछ वात वलय हो गए या जो वात है उसकी बात नहीं है, पूरा लोक का आउटर जो वात वलय है, चहुं ओर से वो वात वलय से लिपटा हुआ है लोक, है ना। लोक किसके आधार से है, तो तीनों वात वलय से। वात वलय किसके आधार से है, आकाश के। आकाश किसके आधार से है, अपने स्वयं के। ऐसी बात आती है, यानी कोई वहाँ शेषनाग नहीं बैठा है पृथ्वी को लेने वाला। घनलोक का प्रमाण 343 घनराजु है, अधोलोक का प्रमाण, यह हमने पहले निकाल के देखा था, अधोलोक का प्रमाण 196 घनराजु है, ऊर्ध्वलोक का प्रमाण 147 घनराजु है। ये हमने 2-3 बार निकाल के भी देखा था। अब ऊर्ध्वलोक के प्रमाण को लाने के लिए नीचे सूत्र गाथा दी जाती है। ये पहले निकाला था, फिर भी वो फिर दोबारा बता रहे। ये गाथा भी पहले बताई थी। मूलम अच्छेण गुणम मुह सहिदम मुसेदक द्विगुणिदम घनगणिदम जाने चो मुदिंग संठान खेतमी। यही गाथा आई थी। वो एक को 5 गुणा करो, फिर उसमें एक मिला दो, उसका आधा करो, 6 वगैरह वगैरह। इसका अर्थ नीचे देखा, देखो मूल के प्रमाण को मध्य के प्रमाण से गुणित करके, मूल है 1 राजु, मध्य है 5 राजु, तो 5 से गुणित करके जो लब्ध आवे उसमें मुख का प्रमाण जोड़कर आधा करो। 5 में 1 मिला दिया, 6 हो गए, उसका आधा किया, 3 हो गए। पुनः इसे उच्छेद के वर्ग से गुणित करो। उच्छेद है 7 राजु, उसका वर्ग है 49 स्क्वायर राजु, प्रतर राजु। वह मृदंगाकार क्षेत्र में घनफल लाने का गणित जानना चाहिए। यही गाथा और यही बात हमने पहले भी देखी थी। अब इस गाथा का अर्थ कहते हैं। मूल अर्थात मृदंग क्षेत्र के बुधन विस्तार को मृदंग क्षेत्र के मध्य विस्तार 5 राज्यों के साथ गुणित करके जोड़ दे। इसका तात्पर्य यह हुआ, मुख को अर्थात मृदंगाकार क्षेत्र के मुख विस्तार के प्रमाण को मृदंग के मध्य विस्तार 5 राज्यों से सहित अर्थात युक्त करके आधा आधा करके समीकरण कर ले। अनंतर उसे उच्छेद के वर्ग से गुणित करने पर, उच्छेद का वर्ग से गुणित क्यों किया, क्योंकि ऊर्ध्वलोक की हाइट भी 7 राजु है और दक्षिणोत्तर डेप्थ भी 7 राजु है, इसलिए उसका वर्ग कर दिया डायरेक्ट। मृदंग क्षेत्र का घनफल होता है, देखो विशेषार्थ पृष्ठ 21 जो हम पहले देख चुके थे। अब 16वीं गाथा ये भी आई थी। मुह मुह तल समासम उच्छेद गुणम गुणम च वेहेण घनगणिदम जाने चाह वेत्रासन संठिये खेते। ये वेत्रासन कहाँ की बात है, अधोलोक की। मुख के प्रमाण और तलभाग के प्रमाण को जोड़कर आधा करे, 1 + 7 = 8 हो गए, उसका आधा 4 हो गया। पुनः इसे उच्छेद से गुणित करके वेद से गुणित करे, 7 राजु गुणा 7 राजु। यह वेत्रासन के आकार वाले क्षेत्र में घनफल लाने की प्रक्रिया जाननी चाहिए। इस गाथा से अधोलोक का घन गणित ले आना चाहिए। ये तो हमने पहले भी 2-3 बार निकाला था। अब लोक के पर्यंत भाग में, पर्यंत यानी आउट, पर्यंत पूरा लोक वेढ़ा हुआ है और उसके अंतिम भाग, हम कैसे कहें पर्यावरण कहते हैं ना वैसे पर्यंत, ये ऐसे शब्द हम पर्यंत यानी तक इतने अर्थ में हम लेते हैं हमेशा, पर यहाँ पर्यंत यानी लोक के पर्यंत भाग में यानी आउटर भाग में उसके वेढ़ा हुआ पूरा घेरा हुआ पर्यंत भाग में स्थित वात वलय से रुके हुए क्षेत्र के लाने की विधि को बतलाते हैं। यानी पूरे लोक का आउटर भाग में जो वात वलय है वो कितने क्षेत्र में वात वलय है उसको लाने की विधि बतलाते हैं। लोक के तल भाग में तीनों वायुओं में से प्रत्येक वायु का बाहल्य 20,000 योजन प्रमाण है। नीचे उस सब बाहल्य को एकत्र करने पर 60,000 योजन बाहल्य प्रमाण जगत प्रतर होता है। क्यों जगत प्रतर होता है, क्योंकि नीचे 7 राजु गुणा 7 राजु ऐसा है ना, ये जगत प्रतर हुआ और मोटाई उसकी 60,000 योजन तीनों वात मेले मिलके, तो जगत प्रतर गुणा 60,000 योजन तो पूरा नीचे की बात। जगत प्रतर इतनी विशेषता है कि पूर्व और पश्चिम के दोनों ही पार्श्व भागों में 60,000 योजन ऊंचाई तक हानिरूप क्षेत्र की अपेक्षा उपर्युक्त क्षेत्र हानिरूप है। ये नहीं समझे, ये जो ऐसा है ना 60,000 योजन है परंतु ये इस तरह से कम होता है, बताते समय ऐसे 60,000 योजन जगत प्रतर ऐसा लेंगे, परंतु वो थोड़ा कम है, ऊपर की ओर कम है, क्योंकि उसका शेप लोकाकाश का ऐसा है, वात वाले भी उसी शेप में जाएंगे, तो थोड़ा कम है मुख की ओर। फिर भी इस उन क्षेत्र की गणना करके और उसे 60,000 योजन मोटा जगत प्रतर प्रमाण संकल्प कर उसे छिन्न करके पृथक स्थापित कर देना चाहिए। ये सबसे नीचे का एक, अभी हम अलग अलग भागों में क्षेत्रफल निकाल के उसका घनफल निकाल के अलग अलग रखेंगे, बाद में सबकी टोटल करेंगे। पहले में पहले सबसे नीचे की बात की, 60,000 योजन मोटा और जगत प्रतर प्रमाण उसकी क्षेत्रफल, तो 60,000 योजन जगत प्रतर ये नीचे के वात वलय का घनफल हुआ उसका उदाहरण। अधोलोक का तलभाग 7 राजू लंबा और 7 राजू चौड़ा है, क्योंकि अधोलोक में सबसे नीचे पूर्व पश्चिम भी 7 राजू है, दक्षिण उत्तर भी 7 राजू है, तो 7 राजू × 7 राजू चौरस है, अतएव उसका क्षेत्रफल जगत प्रतर प्रमाण होगा। तलभाग में प्रत्येक वात वलय 20,000 वो हजार निकाल देना, हजार शब्द निकालना, और उन्होंने वहाँ 2,000 लिखा है, वो 20,000 चाहिए। शुद्धि पत्रक में उन्होंने 2,000 लिखा है, वो 20,000 चाहिए। शुद्धि पत्रक में शुद्धि करना, तो प्रत्येक वात वलय 20,000 योजन मोटा है। अंकों में 20,000 लिखा है, फिर अक्षर में हजार लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए तीनों वात वलयों की मोटाई 60,000 योजन होती है। इसे जगत प्रतर से गुणित करने देने पर 60,000 योजनों के जितने प्रदेश होंगे उतने जगत प्रतर लब्ध आते हैं। यही तलभाग के वातरुद्ध क्षेत्र का घनफल है। वातरुद्ध ने वायु से रोका हुआ क्षेत्र जो है, वातरुद्ध यानी वात वलय का क्षेत्र। ये नीचे की बात हुई, तल में सबसे नीचे यानी नीची के पृथ्वी के भी नीचे। पुनः 1 राजू उत्छेद रूप, 7 राजू आयाम रूप और 60,000 योजन बाहल्य रूप से उत्तर और दक्षिण संबंधी, यहाँ उन्होंने पूर्व और पश्चिम संबंधी किया है, दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित वात क्षेत्र को बुद्धि से पृथक करके उसे जगत प्रतर प्रमाण से निबद्ध करने पर 120,000 योजनों के 7वें भाग बाहल्य प्रमाण जगत प्रतर होता है। पार्श्व भाग इन्हें साइड में, हाँ सभी साइड में होगा, ये तो नीचे की भाग, तो सभी साइड में भी होगा। तो उसकी हाइट कितनी है, 1 राजू तक उसकी जो चौड़ाई है वात वलयों की, वो 60,000 योजन ही रहती है। 1 राजू हाइट तक नीचे से 1 राजू, पहले तो नीचे की बात होगी तल, अब यहाँ जो पृथ्वी चालू हो जाती है तो यहाँ 1 राजू तक इसकी मोटाई कितनी है, 60,000 योजन। तो चहुं और बताएंगे, पहले ये पार्श्व भाग में बताएंगे, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर वो भी फ्रंट और बैक वहाँ की भी बात करेंगे, वहाँ भी ऐसा ही कहेंगे। तो क्या कहते हैं देखो, उदाहरण में उसको फिर बताया, 120,000 योजनों के 7वें भाग प्रमाण जगत प्रतर होता है, ये कैसा निकाला उसको उदाहरण में देखते। देखो अधोलोक के तलभाग से ऊपर 1 राजू प्रमाण वात वलय से रुके हुए क्षेत्र का घनफल, मेरे ख्याल से कल ही देखना पड़ेगा, समय होने को आया, ऐसा देखना। देखो ये 1 राजू तक यही 60,000 योजन का है, यानी उसके बाजू में भी, नीचे के तल के नीचे की बात की हमने, अब नीचे से 1 राजू तक ये 60,000 योजन से ही लिपटा हुआ है चहुं ओर से, तो दक्षिणोत्तर की बाजू में भी निकालेंगे और पूर्व पश्चिम की ओर से भी निकालेंगे, उसका गणित कल हम देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो